વાણી થી
सोलह तीन बानवे की अव्यक्त वाणी पेज तीन का अंत
बच्चों ने सेवा तो बहुत अच्छी की, इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया। वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ, स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफी संख्या में नजदीक आई, इसके बाप के नजदीक आई। ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। इसे कहा है? बच्चों से भी कहा तो ठीक है, बच्चों से ही बात करेंगे, लेकिन इस वाणी में खास किससे कहा? बाप को कहा। बाप ने किससे कहा? इसे वाणी चल रही थी ना, कनेक्शन जोड़िए, है? डबल विदेशियों से बात चल रही थी तो विश्व को संदेश देना है। एक एक को संदेश देते जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बना करके आगे आ गई है। सोलह तीन वाणी की अव्यक्त वाणी का चौथा पेज, लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज्यादा है। क्या संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज्यादा है? माना राज्य अधिकारी बच्चे थोड़े निकले हैं और प्रजावर किया। तो कैसी क्वालिटी की सर्विस हुई? हमारा प्रजायोग तो है नहीं, नाम क्या है? राजयोग। पर राजा रानी बनने वाली आत्माएं निकलनी चाहिए, तो राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तख्त पर बैठने वाले ये दोनों प्रकार के बच्चे तो अच्छे निकाले। मानो तो बता दिया कि राजयोगी बच्चों ने राज्य फैमिली में आने वाले, इतनी फैमिली है राज्य की, राज्य फैमिली में आने वालों की संख्या कितनी है? 16,108 प्रिंसेस बनने वाले सब राज्य फैमिली के बच्चे हैं, अथवा राज्य तख्त पर बैठने वाले। उन प्रिंसेस में तो सब तो राजा नहीं बनते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो राज्य तख्त पर बैठते हैं। तो दोनों अच्छे निकाले, लेकिन थोड़े कौन से निकाले हैं? है? तुम राजी तख्त पर नहीं बैठते क्या? राजी तख्त पर नहीं बैठते? यहाँ तो बताया कि राजे बच्चे भी निकाले हैं और राज्य फैमिली में आने वाली आत्माएं भी निकाली हैं। और संदेश देने की जो संख्या है जिससे प्रजा निकलती है वो भी बहुत निकले, लेकिन कौन से कम निकले? किस तरह के बच्चे बाप दादा चाहते हैं? राज्य अधिकारी बच्चे। कौन से राज्य के राज्य अधिकारी? विश्व राज्य के राज्य अधिकारी। क्यों? क्योंकि जो विश्व का राज्य होगा उसमें राजा एक होगा या अनेक होंगे? राजा तो एक ही होगा, विश्व महाराजन कहो बाकी सब क्या होंगे? बाकी सब होंगे फैमिली के, प्रजा वर्ग के, और कौन से चाहिए जो नहीं निकले? राज्य अधिकारी बच्चे। क्योंकि जो फर्स्ट राज्य है उसमें तो राजा विश्व महाराजन तो एक ही होगा, बच्चों में महाराजा तो एक ही होता है, राजाएं तो होते नहीं, ये होते हैं सेता में राजाएं होते हैं और सत्युग में सिर्फ महाराजा होता है, एक जन्म में एक महाराजा। तो 21 जन्मों की बादशाही में से जो पहले जन्म की बादशाही है उसमें महाराजा तो एक ही होगा, बाकी सब क्या होंगे? राज्य अधिकारी होंगे। तो यहाँ तो बोला कि राज्य पर बैठने वाले वो भी निकले हैं, राज्य फैमिली वाले भी निकले हैं, तो उस जन्म में तो राज्य फैमिली वाले तो होते हैं फर्स्ट जन्म में। 21 वर्ष में से जो पहला वर्ष है संगम युगी स्वर्गीय संगठन, उसमें राज्य फैमिली वाले होंगे, प्रजा भी होगी लेकिन राजा नहीं होंगे। क्या? कौन होंगे? लेकिन अकेला विश्व महाराजन छोड़े ही चलाएगा राजा ही, सही होगी बच्चे तो भुजाओं के रूप में जरूर होंगे। ब्रह्मा की कितनी भुजाएं गाई हुई है? 1000 भुजाएं। तो ब्रह्मा स्थापना का निमित्त है, तो जो स्थापना का निमित्त बनता है वो पालना का भी निमित्त बनता है। तो जिन्होंने स्थापना में सहयोग दिया ब्रह्मा की 1000 भुजाएं अभी कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है, लेकिन 1000 भुजाएं एक साथ चल पड़ेंगी या नंबरवार चलेंगी? नंबरवार ही चलेंगी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि 1000 भुजाएं एक साथ चल पड़े, बाई और बाई, लेफ्ट इस और राइट इस। तो उन 1000 भुजाओं में से राज्य अधिकारी बच्चे हैं जो राज्य को इतना बड़ा विश्व का शासन उसको संचालन करने वाले राज्य अधिकारी भी होंगे। फर्स्ट राज्य के राज्य अधिकारी कोई सामान्य आत्माएं नहीं होंगी, ये है विश्व का राज्य, 500 करोड़ की दुनिया है, उसको कंट्रोल करने की बात है। सतगुरु महाराजन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, बड़े बड़े महत्वाकांक्षी राजाएं हुए, लेकिन वो बाहुबल से सारे विश्व के ऊपर राजा ही नहीं कर सके, एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। ये विश्व की बात है, 500 करोड़ की बात है, सिर्फ योग बल से संगमी इसके पहले ही चरण में मिलती है और वो डायरेक्ट सुप्रीम सोल प्राप्त से मिलती है। जैसे सतीगुण जो नारायण होंगे वो डायरेक्ट बाप से लेने वाले नहीं होंगे। तो इस राजाई में आने वाले जो राज्य अधिकारी हैं वो भी कोई सामान्य आत्माएं नहीं होंगी। तो बताया कि संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज्यादा है। संदेश तो बहुतों को मिला। राज्य फैमिली में आने वाले राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों अच्छे निकाले। मतलब कि सचिव के नारायण भी निकल चुके, क्योंकि वो भी राजाएं होंगे, महाराजाएं होंगे, त्रेता के राजाएं भी निकले क्योंकि वो भी राजाएं होंगे। द्वापर और उसके आधार पर 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों में आने वाले राजा भी निकले, लेकिन कौन नहीं निकले? राज्य अधिकारी बच्चे नहीं निकले, वो छोरे निकले। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे। लेकिन निकले नहीं है अभी, बनेंगे तो आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? विश्व का राज्य कंट्रोल करने वाले आप बनेंगे या औरों को बनाने का चांस देंगे? औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे और आप क्या बनेंगे? इससे बात हो रही है कौन से बच्चों से? डबल विदेशी बच्चों से। कल बताया ना, देश की भाषा में डबल विदेशी बच्चे कौन से हैं? लौकिक से भी ठुकराए हुए और अलौकिक ब्राह्मण परिवार से भी ठुकराए हुए डबल विदेशी बच्चों की बात कर रहे हैं। तो अभी चारों ओर संदेश पहुंचाने के लिए ऐसी आत्माओं को समीप लाओ जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। सब संदेश लेने की फास्ट गति होगी। इसका मतलब इतने मेले किए, इतने सम्मेलन किए, इतनी प्रदर्शनियां की, इतने प्रोजेक्टर्स हुए, प्रोजेक्टर्स हो और इतनी भाषणबाजी हुई, लेकिन सर्विस की फास्ट गति नहीं हुई। तो अभी चारों ओर संदेश पहुंचाने के लिए ऐसी आत्माओं को समीप लाओ जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। इसलिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि जो जहां ज्यादा में ज्यादा संख्या है, चाहे इंस्टीट्यूशन है चाहे इंडस्ट्रीज है, दोनों में संख्या ज्यादा होती है, तो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो आपके सेवा के साथी बनकर औरों को समीप लावे। क्या बात है? इंस्टीट्यूशंस माने संस्थाएं और इंडस्ट्रीज माने फैक्ट्रीज, व्यापार से संबंधित इंडस्ट्रियल्स हों, चाहे उनमें काम करने वाले हों, चाहे इंस्टीट्यूशन से हैं, शिक्षा के भी होते हैं, अनेक प्रकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं, हद के भी हैं तो बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में भी है। किंतु ब्राह्मणों की दुनिया में इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उन्हें ज्ञान की बातों से लेन देन ज्यादा, करने से सरोकार नहीं है, वो अपना धंधा चला रहे हैं। लेकिन हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री चलाने वाले, और इंस्टीट्यूशन भी, संस्थाएं भी हैं जो शिक्षा देने का कार्य कर रही है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का भी उद्देश्य लेकर के चलती है। तो बताया कि दोनों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो आपके सेवा के साथी बनकर औरों को समीप ला रहे। वो अपना धंधे में तो होशियार, लेकिन आपके साथी नहीं बने, यानी उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। संस्थाएं तो चला रहे, बड़े बड़े विद्यालय चला रहे, इंस्टीट्यूशन संस्थाएं, लेकिन असली विश्वविद्यालय उसका सदगुरु जगत गुरु कौन है उसका उनको पता नहीं, तो आपके अभी सहयोगी नहीं। तो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो आपकी सेवा के साथ ही बनकर औरों को समीप ला दे। आप संदेश देते आगे की, आगे बढ़ते जाओ, उन्हों को निमित्त बनाओ, क्योंकि वो उस धंधे में बहुत होशियार है। संदेश देने के लिए निमित्त बना दो, क्या क्योंकि सर्विस ही उन्होंने जाति कौन सी की है, संदेश देने की, तो संदेश देने में वो एक्सपर्ट है। लेकिन जिस तरह की आत्माएं सप्त राज्य की श्रेष्ठ श्रेष्ठ बगीचे की प्रजा बाप दादा चाहते हैं, वो प्रजा भी अभी अभी नहीं निकली है। तो आप आत्माओं की स्टेज के अनुसार आपको बलि बनाई स्टेज प्राप्त होगी। आपने अभी भाषणबाजी की स्टेज तैयार नहीं की है, तो वो स्टेज तैयार करने में एक्सपर्ट है, बनी बनाई स्टेज आपको देंगे। औरों की सेवा में तन मन धन लगाने का उनको चांस दो, अभी जो तन मन धन वो लगा रहे हैं वो स्वार्थ के लिए ज्यादा लगा रहे हैं, औरों की सेवा के लिए उनका लक्ष्य उतना नहीं है। चाहे तन लगाएं, चाहे मन लगाएं, चाहे धन लगाएं, तब तो सती की प्रजा में आएंगे, कुछ न कुछ लगाएं क्योंकि तीनों लगाएंगे तो वारिसदार बन जाएंगे। लेकिन अगर उन तन मन धन में से एक भी लगाया तो भी अच्छे साहूकार प्रजा बन सकते। उन्हों को बीज बोने दो, आप लोगों ने तो बीज बो लिया ना, काहे का बीज बोली है, है? है? काहे का बीज बोली है, संदेश देने का। संदेश देने का बीज बोली है, है? राज्य अधिकारी बच्चे बनाने का बीज नहीं बोया, वो बीज नहीं बोया अभी। बाबा ने तो बताया कि नहीं बोया, तो शासन अच्छा चलता है। अभी तो बहुत डिस्टर्बेंस है, फायदा कुछ नहीं, बड़ी डिस्टर्बेंस है, सब कुछ बिखरा पड़ा। तो आप लोगों ने तो बीज तो बो लिया ना, फल पाए रहे हो क्या? संगम युग 21 जन्मों से पहले का युग, संगम युग में भी कौन सा 21 जन्म की प्राप्ति से पहले का पुरुषार्थी जीवन, वो फल खाने का जीवन है या पुरुषार्थ करने का जीवन है? पुरुषार्थ करना है, अभी मान मर्तव्य का फल नहीं खाना है। तो आप ऐसा ग्रुप बनाओ, एक मास व दो मास के लिए सेवा के ग्रुप में कोई किस तरफ, कोई किस तरफ संदेश देने के लिए निकले। एक ही समय पर 7-8 ग्रुप बनाओ, जब बाप दादा ने ये डायरेक्शन कब दिया, 16 मार्च 1992 को, और फिर बाद में ये भी बता दिया कि अप्रैल में तपस्या वर्ष पूरा होने पर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जनरल हेड को भी ट्रांसफर करेंगे, ब्राह्मणों की आधारभूत तो दुनिया में ही ट्रांसफर होंगे कि बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी? तो 7-8 ग्रुप्स बनाओ और अपनी एरिया में एक एक ग्रुप सेवा के लिए निकले। है कहाँ निकले? अपनी एरिया, विश्व सेवा के लिए नहीं, अपनी अपनी एरिया के। ये अपनी एरिया क्या होती है? अपनी एरिया का मतलब क्या है? मतलब जो जिसका, जिस जोन का जोनल इंचार्ज है वही उसकी अपनी एरिया, जिस का बादशाह नहीं बनना है उनको, वो लक्ष्य छोड़ दिया क्या है? स्थान से और व्यक्ति से कोई सीमा बांध रखी है? ये अच्छी बात है, सीमा बांध ली। जयराम राजवास ने सीमा कोई नहीं बांधी हुई, विश्व सेवाधारी है, पक्का रखना। अच्छा
बाबा जरूर चेंज कर देंगे।
कहाँ चेंज किया, डायरेक्शन क्या दिया? अपनी अपनी एरिया में एक एक ग्रुप सेवा के लिए निकले। बाबा ने कितना चेंज किया? बाबा कोई जबरदस्ती किसी को चेंज क्यों कर देगा? भाई तुम्हें जहाँ लगाव है और वहाँ ज्यादा अच्छी सेवा कर सकोगे। अपने बच्चों से ज्यादा लगाव है तो अपने परिवार की ज्यादा सेवा करोगे, या कहीं दूसरी जगह फेंक दिया जाए, रख दिया जाए, तो वहाँ लगाव पूर्वक सेवा होगी या बेलगाव से? तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा या खराब निकलेगा? बेलगाव से करने से अच्छा निकलेगा। यानी ईश्वर की सेवा करनी है लेकिन बेलगाव से करनी है, लेकिन नहीं, ईश्वरीय सेवा भी लगन पूर्वक अच्छी होगी, लगाव से अच्छी होगी। अगर ईश्वर में लगाव है, झुकाव है, तो सेवा भी अच्छी होगी, ईश्वरीय परिवार की भी सेवा अच्छी होगी। और लौकिक में अगर लगाव है और ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं लौकिक परिवार की, तो लौकिक परिवार वालों की ईश्वरीय सेवा अच्छी होगी। यहाँ लगन होती है वहाँ सेवा भी अच्छी होती है। तो अपनी एरिया में एक एक ग्रुप सेवा के लिए निकले, चाहे छोटे देश हो चाहे बड़े देश हो, जो जिसके नजदीक पड़ते हैं वहां से ग्रुप तैयार करके भेजो। लेकिन वह ग्रुप भी सेवा करने की विधि यही बुद्धि में रखे कि ऐसे मुख्य को जगाएं जो औरों को जगाते रहे, यानी शर्म से वो निकले, वहां से ही तैयार करो और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि जब भी सेवा बढ़ाना चाहते हो तो पहला प्रश्न उठता है, हैंड्स कहाँ से आएंगे? अड़चन क्या आती है? सेवा तो बढ़ जाती है लेकिन हैंड्स नहीं निकलते। तो ये हैंड्स नहीं निकलते हैं, वो हैंड्स किसके तैयार करने हैं? ब्रह्मा के लिए जाए। अभी क्या बोला? कैसी आत्माओं को संदेश मिला है? राज्यधिकारी बच्चों को संदेश मिला है? संदेश तो मिला है लेकिन अभी राज्यधिकारी निकले नहीं हैं। तो हैंड्स निकले, राज्यधिकारी बच्चे निकले, जो विश्व की शासन सत्ता बाप बनाने के लिए आया हुआ है पहले जन्म की, वो सत्ता को संभालने वाले निकले, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार और आज्ञाकारी। क्योंकि अगर अधिकारी वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार नहीं होंगे, आज्ञाकारी नहीं होंगे, तो शासन अनुशासनहीन होगा, श्रेष्ठ शासन नहीं हो सकता। तो जगह जगह पर ऐसी आत्मा तैयार करो और फिर तैयार हुए उम्मीदवार हैंड्स को विशेष समय निकाल ट्रेनिंग दो, फिर वह चलाते रहे। और जो निमित्त हैं वो चक्कर लगाते रहे ऐसे हैंड्स निकालने के लिए। पुराने सेंटेंस तो पक्के हो गए। वो तो हिलने डुलने वाले नहीं, नयों में चक्कर लगाते, नयों को पुराना बनाओ। योग्य हैंड्स बनाने का साधन है समय प्रति समय हैंड्स को ट्रेनिंग देना। जहां भी नजदीक हो, चाहे आठ हो दस हो, लेकिन ट्रेनिंग समय प्रति समय देना पड़ेगा। समय प्रति समय ट्रेनिंग मिलना बहुत जरूरी है। जैसे पहले भी भारत में कभी यूथ ग्रुप, कभी एजुकेशन के ग्रुप, कभी डॉक्टर्स के ग्रुप बनाए, ऐसे रहे हुए स्थानों पर ग्रुप बनाकर लक्ष्य रखो कि यहाँ से ही कोई को निमित्त बनाना है। यूथ ग्रुप हद की भाषा में दिए, डॉक्टर्स ग्रुप भी हद की भाषा में तो बेहद की भाषा में दिए। एजुकेशन के ग्रुप हद के भी एजुकेशन वाले होते हैं और बेहद में भी एजुकेशन वाले हैं। एजुकेशन मिनिस्टर तो ये भी ध्यान देना है। तो लक्ष्य रखो कि यहाँ से ही कोई निमित्त बनाना है। निमित्त बनाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अभी संबंध संपर्क तो आपका अच्छा बन गया है, क्या चारों ओर संबंध और संपर्क तो अच्छा बन गया। कौन से ग्रुप के साथ? लौकिक डॉक्टर के ग्रुप के साथ है, लौकिक एजुकेशन ग्रुप के साथ है, या लौकिक में यूथ ग्रुप के साथ है, या अलौकिक में किसके साथ आपका अच्छा कनेक्शन हो गया है? लौकिक के साथ हुआ है। बीज रूप आत्माओं की दुनिया वालों का कौन से के साथ अच्छा कनेक्शन हो गया है? अलौकिक ग्रुप के साथ अच्छा कनेक्शन हो गया। और आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया में उनका कैसे ग्रुप के साथ कनेक्शन हुआ? लौकिक डॉक्टर, लौकिक एजुकेटर, लौकिक मिनिस्टर के साथ उनका अच्छा संबंध संपर्क हो गया। हद और बेहद का अंतर है। तो अभी संबंध संपर्क तो आपका अच्छा बन गया, सभी के मन में प्रभाव भी अच्छा है, एजुकेटर्स में भी प्रभाव अच्छा है, डॉक्टर्स में भी प्रभाव अच्छा है, सभी ग्रुप में प्रभाव अच्छा है। लक्ष्य रखने से ऐसी सहयोगी आत्माएं भी मिल जाएंगी हर प्रकार के ग्रुप की, कॉन्फ्रेंस, योग से ऐसा लक्ष्य नहीं रखना है। क्या बनाओ गीता पाठशाला के माफे को सेवा केंद्र से केंद्र बन जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि, लेकिन जो भी ग्रुप जहाँ जावे, मतलब हाँ सबकी सेवा भी करें और सर्व की सेवा करें। ऐसे नहीं कि अपनी सेवा में लग गए तो बस तपस्या वर्ष नहीं लग गए, दूसरों की सेवा भूल गए या एक तरफ उठा के रख दी। नहीं, या दूसरों की सेवा में लगे तो अपनी अवस्था खराब कर ली। सती सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा का लक्ष्य कम ओम शांति। यह है 16392 की अवगतवाणी का चौथा पेज। बात चल रही थी कि स्वकी सेवा और सर्व की सेवा संपर्क संबंध में आने वालों की दोनों का लक्ष्य कंबाइंड रूप में रहे, नहीं तो जो निमित्त हर्ष हैं उनको सोचना पड़ता है कि औरों की सेवा करते करते कहीं खुद तो ढीला नहीं हो जाएगा। इसलिए ये अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। सभी डबल विद्यार्थियों ने सभी स्थानों से पत्र भी बहुत याद प्यार के लाए। बाप दादा के पास तीन प्रकार के पत्र पहुंचे। एक तो है अति स्नेह के खुशखबरी के, दूसरे हैं पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का लक्ष्य कैसे रखा है वो समाचार के पत्र, और तीसरे हैं थोड़ा थोड़ा बीच में नटखट होने के पत्र। कोई ने क्या लिखा नटखट पने की बातों में, लेकिन बाप दादा सभी पत्र लिखने वाले बच्चों को यही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि सदा कंबाइंड स्थिति अर्थात बाप और आप, ये भी कम्बिनेशन हो, ये कंबाइंड स्थिति कंबाइंड सेवा और सदा फरिश्ते स्वरूप का संपूर्ण लक्ष्य सामने रखो। आज पुरुषार्थी हैं और कल हम फरिश्ता बनने वाले, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक बच्चे फरिश्ता नहीं बने हैं, फर्श की दुनिया वालों से अपना अपना रिश्ता जोड़े हुए जरूर है, नहीं तो बाप दादा को ऐसा नहीं कहना पड़ता क्या कि आज हम पुरुषार्थी हैं और कल हमको फरिश्ता बनना। बाप दादा तो उस स्टेज पर हैं, किस स्टेज पर फरिश्ता स्टेज पर, बाप और दादा दोनों या सिर्फ बाप या सिर्फ दादा दोनों, बाप कौन शिव बाप वो फरिश्ता होता है खुद से मतलब बनता है, है? है? तो बिंदु है वो तो साकारी तन में आता है तो साकार कहाँ जाता है, बनता तो फिर भी बिंदी फिर भी नहीं बनता क्योंकि निराकार स्टेज नहीं रहता है तरह। तो बाप दादा कौन आखिर, कोई तो बना है फरिश्ता कि कोई भी फरिश्ता नहीं बना, बना तो कौन बना है? ब्रह्मा और बाप है, प्रजापिता और ब्रह्मा, वो तो दोनों एक ही हो गए एडवांस एनालिसिस के आधार पर, व्यक्तित्व तो एक ही हो गया है प्रजापिता ब्रह्मा या कहो बाप दादा है के? फिर दूसरा बच्चा कोई फरिश्ता बनाई नहीं, सबका फर्ज कितनी वालों से रिश्ता लेना पड़ा है क्या है? अभी कोई नहीं बन गया, मामा बन गई है, मामा भी नहीं बनी। अरे सरस्वती जगदम्बा जिसका नाम टाइटल दिया वो अमरावती की सोल भी नहीं बनी, बन गई कहाँ है? है संगम युग में कहाँ पर है, है? किसने किसने प्रवेश करके पाठ बन जा रही है, जिसका लौकिक दुनिया से लौकिक संबंध से कोई रिश्ता न हो, मन का सेवा के आधार पर वो आपने तीव्र गति से सतह खींची चली है, क्योंकि फर्ज से कैसी सेवा करते हैं, मन का सेवा करें, उनका मन ही इतना पावरफुल होगा, पुरुषार्थ ही है, पुरुष माने आत्मा और अर्थी माने आत्मा के अर्थ कार्य करने वाले, तो आत्मा के कल्याण के अर्थ कार्य करने वाला तो शरीरधारी होता क्या, स्थूल शरीरधारी, फरिश्ता कोई आत्मा का कल्याण, सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा का क्या कल्याण करेगा बिना शरीर के, तो आज बच्चे पुरुषार्थी हैं और कल फरिश्ता, सदा फरिश्ता का रूप ऐसे सामने हो जैसे स्वयं का स्वरूप सदा स्मृति में रहता है, अपना स्थूल रूप कभी भूलता नहीं है ना, क्या कहा, वाह भाई, यानी बच्चों की अभी ऐसी स्टेज है कि अपना स्थूल रूप यानी साकारी रूप कभी भूलता ही नहीं, इसका मतलब आकारी स्टेज में स्थिर होता ही नहीं है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में कभी तो रहते होंगे है? कि कभी फैल नहीं पाते, घंटे दो घंटे रहते हैं है? ये क्यों कह दिया कि अपना स्थूल रूप कभी भूलता नहीं है ना, यानी इतना देहभान है अभी तक कि अपने स्थूल देह का भान कभी भूलता ही नहीं, लेकिन ना लगा हुआ है, इसका मतलब अभी कुछ गुंजाइश है, सोलह तीन बानवे की अगर वाणी का पांचवा पेज, तो जैसे स्थूल रूप सदा याद रहता है वैसे अपना फरिश्ता स्वरूप सदा ही स्पष्ट सामने हो, क्योंकि स्थूल रूप सदा याद रहता है, फरिश्ता रूप सदा नहीं याद रहता, तो बीज रूप स्टेज तो सदा बन जाए ये तो बहुत ऊंची बात है, तो फरिश्ता स्वरूप सदा ही स्पष्ट सामने हो, बस अभी अभी बने के बने, फरिश्ते थे फरिश्ते हैं और कल्प कल्प फरिश्ते हमको ही बनना है, तो हिम्मत उमंग उत्साह से बढ़ते चलो उड़ते चलो, साफ दिल से लिखते बहुत अच्छा है, क्या साफ दिल से लिखते बहुत अच्छा है, यानी सच्चे दिल के बच्चे हैं, अपनी कमी कमजोरियों को छिपाने वाले नहीं है, ये डबल विदेशियों की विशेषता है, और फरिश्ता बने भी कौन नहीं है, डबल विदेशी बच्चे, तो साफ दिल से लिखते बहुत अच्छा है, स्पष्ट है, छिपाने वाले नहीं, स्पष्ट का अर्थ है फिक्स, क्या करने की शक्ति बहुत अच्छी है, डबल विदेशी, अभी सिर्फ चेंज करने की शक्ति उतनी मात्रा में रखो जितनी क्या करने की शक्ति है, चेकिंग पावर तो है, चेक कौन करता है, इंस्पेक्शन कौन करता है, अपना या दूसरों का? चेकिंग पावर होगी तो अपनी भी चेकिंग करेगा तो दूसरों की भी करेगा। ये आत्मा की कौन सी शक्ति है? परशक्ति। तो परशक्ति और परस्मी के आधार पर निर्णय शक्ति चेक कर लिया। तो चेक करने की शक्ति बहुत अच्छी है, दबंध देखें, लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। ये आत्मा की कौन सी शक्ति है? मुख्य। आत्मा में तीन प्रकार की शक्तियां हैं, मुख्य जो आत्मा के तीन रूप कहे जाते हैं, तीन रूप धारण करती है, संकल्प शक्ति, मन, निर्णय शक्ति, बुद्धि और परिवर्तन शक्ति, संस्कार। तो अभी चेंज करने की शक्ति उतनी मात्रा में रखो जितनी चेकिंग पावर है। चेकिंग की मात्रा ज्यादा है और चेंज की थोड़ी कम है, परिवर्तन नहीं कर पाते, तो इसका भी बैलेंस रखो। और परिवर्तन का आधार क्या है? परिवर्तन नहीं कर पाते, संस्कारों को नहीं मोड़ पाते, संस्कार में टकराव होता रहता है, उसका कारण क्या? निर्णय शक्ति तो है, अभी तो बताया, प्योरिटी नहीं है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी ही परिवर्तन शक्ति जरूर होगी, चाहे मनुष्य में, चाहे वाचा और कर्मणा। वाचा और कर्मणा में होगी तो मनसा में भी होगी जरूर, और मनसा में ही नहीं होगी तो वाचा कर्मणा में भी नहीं होगी। तो अभी सिर्फ चेंज करने की शक्ति उतनी मात्रा में रखो जितनी चेक करने की शक्ति है। चेकिंग की मात्रा ज्यादा है क्या? शंकर जी का काम बहुत करते हैं, लेकिन विष्णु जी का काम कम करते हैं। और बनना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण अर्थात विष्णु बनना, या शंकर बनने का लक्ष्य दिया है? है? लक्ष्मी नारायण का बनने का लक्ष्य दिया है। बाबा ने स्पष्ट बता दिया कि मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, वो शंकर को करने दो, शंकर का काम शंकर को करने दो, तुम अपना काम करो जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। दूसरों की चेकिंग या अपनी की चेकिंग तो करो, लेकिन जो चेकिंग करने का स्वभाव वाला होता है वो अपनी चेकिंग भी करता है तो दूसरों की भी चेकिंग जरूर करता है। तो चेकिंग करो, लेकिन चेंज भी करो। चेंज की थोड़ी कम शक्ति है तो इसका भी बैलेंस रखो, चेकिंग और चेंज, स्पष्ट और फ्रेश, समझा? सभी के पास पहुंच गए। याद प्यार दिल से देते हैं, बहुत दिल से देते हैं याद प्यार, और लेते भी हैं, रिटर्न उसी समय मिल जाता है। अगर सच्चे दिल से कोई अपनी कमजोरी को लिखता है तो पाप क्षमा का सागर उसी समय रिटर्न में क्षमा कर देता है। क्या? जिस समय बाप को कोई ने अपनी गलती लिख दे दी तो उसी समय बाप के पास पहुंच जाती और बाप क्षमा कर देता है। बहुत प्यार के कारण पत्र दादा देते हैं, गिफ्ट देने वाले स्वयं ही बाप की गिफ्ट हैं। गिफ्ट देना अर्थात गिफ्ट लेना, तो सिर्फ गिफ्ट देना नहीं लेकिन गिफ्ट लेना भी है। अच्छा, कल पहले कबर का लेने के लिए नए नए सभी बच्चे पहुंच गए। क्या था? अभी कई सालों से ये बात चल रही है कि अव्यक्त बाप दादा किन बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, नए नए बच्चों से मिलने के लिए आते, पुराने बच्चों से मिलने के लिए नहीं आते, मिलने चले आते हैं साथ में वो दूसरी बात है, लेकिन प्राय होकर के मिलने किससे आते हैं, नए नए बच्चों से। लेकिन अब क्या बोला, कल पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए सभी बच्चे पहुंच गए। अब वर्षा लेने वालों में 16,000 में से कोई बच्चे आए थे है नहीं, जो बाप दादा से न मिले हो है, सभी पहुंच गए। तो इसका मतलब बाप दादा का जो अव्यक्त बाप दादा का गुंजार दादी में जो पार्ट है, या व्यक्त रूप में भी बाप दादा है, तो उनसे सभी बच्चे मिल लिए, नए भी और पुराने भी। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेलकम। और नए बच्चे के बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं नए बच्चों को। ये क्या बात है, नए वर्ष नए वर्ष की मुबारक किसको दे रहे हैं, नए नए बच्चों को। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, कौन सी कंबाइंड स्थिति बताई, आप और बाप की कंबाइंड स्थिति, और
इससे तो अलग होने की बात ही नहीं, स्मृति की बात है।
तो हाँ, सेवा और सर्व की सेवा, कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सर्वा कंबाइंड सेवा में, अथक सेवा में निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले, होली हंस आत्मा, सदा तीनों काल के वर्षे की खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, कैसे विजयी, जो प्रकृति का भी खेल देखते हैं और माया का भी खेल साक्षी होकर के देखते हैं, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा परिष्कार स्वरूप सामने अनुभव करने वाली देव सातमाओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, याद प्यार भी ऐसी ऐसी आत्माओं को, और बाप दादा झुकते भी कैसी आत्माओं को है, नमन मन झुकना, सर झुकाना, माथा झुकाना, कैसी आत्माओं को, ऐसी ऐसी आत्माओं को बाप दादा नमन करते झुकते। क्यों झुकते हैं भाई, झुकने की क्या बाप दादा की जरूरत पड़ गई है, झुकना तो भक्ति मार्ग में होता है, महिमा करते महिमा करना मैंने झुकना होता है, महिमा तो सब की ही करनी चाहिए, अच्छे अच्छे गुण तो सब में होते हैं कुछ न कुछ, तो अच्छे गुणों की महिमा करनी चाहिए, इसमें झुकने की क्या बात है, कौन झुकता है, पवित्र राजाएं अपवित्र राजाओं के सामने झुकते हैं क्या, अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के सामने नमन करती हैं, ये नियम बताया कि दूसरा कोई नियम बताया,
है ये नहीं बताया तो बाप दादा क्यों दुखते हैं है? पवित्र हम बाप दादा इसलिए बच्चों को झुकते हैं जिनकी अभी संता ही तेज भी नहीं बनी है। अब कैसे कैसे इसको सब बताई दिया आए कैसे बच्चों को बाकी बच्चों को नहीं ये हमेशा बताते हैं व्यक्त पार्थ में और अव्यक्त पार्थ में ये अंतर हो गया। ऐसे ऐसे बच्चों को नमन करते हैं बाकी बच्चों को नमन नमन नहीं करते महाराज बनने वाले हैं आप नारायण बनने वाले हैं सब किसके उनके सामने झुकते हैं अभी भी बताया चार ओर के सर्व कम्बाइंड स्थिति में रहने वाले कम्बाइंड सेवा में अथक निमित्त बनने वाले भूडापना करने वाले सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले बाप के संग के रंग में कब रहेंगे जबकि बीती बातों को भूल जाए और बीती बातों को भूलेंगे नहीं तो बाप से दूरी हो जाएंगे। होली हंसात्मा सदा तीनों कालों के वर्षे की खुशी में रहने वाले तीनों कालों के वर्षे की खुशी में भूतकाल में जो वर्षा मिला वर्तमान में जो मिल रहा है और भविष्य में भी जो मिलने वाला है कि खुशी में रहने वाले सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले ऐसे सदा विजयी सदा उड़ती कला वाले सदा परिष्कार स्वरूप सामने अनुभव करने वाले कोई तो बच्चे बताए हैं कि अभी सामने अनुभव नहीं कर रहे हैं करेंगे आज आज पुरुषार्थी हैं परिष्कारी बने के और कल परिष्कार बन जाएंगे उम्मीद है बाप दादा की लेकिन याद प्यार और नमस्ते किनको दे रहे हैं सदा उड़ती कला वाले सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले तेज आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पहली पार्टी के अध्यक्ष बाप दादा की मुलाकात जैसे आवाज में आना अति सहज लगता है ऐसे ही आवाज से परे हो जाना इतना सहज है बता तो दिया जरूर बाप दादा डबल विदेशी बच्चों का पार्ट बजा रही हूँ अगर डबल विदेशी न बनते बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों से या विदेशी बच्चों से मिल भी न पाते क्यों भारत के लिए आया क्या भारतवासियों के लिए ही आया है 500 करोड़ के लिए बाप दादा नहीं आया आया है तो उनसे मिले नहीं दोगे मिले तो कैसे मिलेंगे विदेशी बनेगा तब मिलेगा कि स्वदेशी बनेगा स्वदेशी की तो एक ही पत्नी एक ही पति होता है क्यों भाई स्वदेशी जो होते हैं वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं अगर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं तो स्वदेशी कहेंगे तो विदेशी होगा और बाप दादा अभी कौन सा पार्ट बजाए रहे विदेशी बने हुए हैं क्यों बाप दादा को विदेशी क्यों कह दिए अरे विदेशी तो याद हो संप्रदाय फिर यादव संप्रदाय का हेड कौन है शंकर है यादव संप्रदाय का हेड बताया मुरली वो तो विदेशी है लेकिन उनका हेड ऑफिस है कृष्ण को महाभारत में क्या दिखाया है यदुवंशी और यदुवंशियों का भी राजा अब आगे समझ में अभी तक भाई समझ में नहीं आई कृष्ण माता को ऐसा क्यों करता है ये कृष्ण माता को कृष्ण था अभी तक कि ये नमन क्यों करता है इसको झुकने की क्या जरूरत
बाप दादा इतना ऊंचा पद बढ़ाने वाला आए भी आत्माओं को झुकता है। अब समझ में आ गई पक्की नहीं आई? समझ में नहीं आई? अरे ज्यादा ये माता भी समझ गई जिन माताओं के लिए बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए बाप रहा नहीं क्या रहा बाप और वर्ग को याद करो। तुम्हारी ज्यादा जल्दी बात समझ में नहीं आती तो बाप और वर्ग को याद करो क्योंकि बड़ा परिवार चार से आठ बच्चे पैदा किए सारी शक्ति तो उसी में चली गई मन बुद्धि और तन की ताकत। और बिंदिया क्या कह रही है हमको ये बात अभी समझ में नहीं आई नहीं भाकर समझते अच्छा चल तो आवाज से परे हो जाना इतना ही सहज लगता है जितना आवाज में आना सहज लगता है। ये बुद्धि की एक्सरसाइज सदैव करते रहना चाहिए जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त बनाती है ऐसे आत्मा की एक्सरसाइज आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। कौन सी एक्सरसाइज बताई? आवाज से परे बुद्धि की स्टेज बनाने तो ये एक्सरसाइज आती है या आवाज में आने की प्रैक्टिस ज्यादा अभी अभी आवाज में आना और अभी अभी आवाज से परे हो जाना जैसे वह सहज लगता है वैसे ये भी सहज अनुभव क्योंकि आत्मा मालिक है। कभी राजयोगी हो सदा योगी तो नहीं हो है? कौन सा योग सीख रहे हो? राजयोग राजा बनना है ना राज फैमिली में आना है ना या सोच लिया है कि स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे या पहले राज्य में तो आ ही जाएंगे राजा का काम है ऑर्डर पर चलना या चलाना राजा का काम है ऑर्डर पर चलाना किसको ऑर्डर पर चलाना है कर्मेंद्रियों को सिर्फ कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर चलाना है। मन और बुद्धि ये कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां ये तो ग्यारहवीं इंद्रिय है क्या मन बुद्धि तो इनको भी ऑर्डर पर चलाना है। बुद्धि को हम जहां सेट करना चाहें वहां बुद्धि सेट हो जाए तो ये मुख भी आपके आर्डर पर हो जब चाहो तब आवाज में आओ और जब चाहो तब आवाज से परे हो जाओ। तो ये प्रैक्टिस करनी है कि अभी अभी हम बहुत बातचीत कर रहे हैं और एकदम डेड साइलेंस में चले जाओ है डेड साइलेंस क्यों? क्योंकि एकदम जब छोड़ेंगे तो उसी साइलेंस में भी जाए सकेंगे और वहां से तोड़ा ही नहीं बुद्धि को जैसे होता है कभी कभी हम बहुत प्रिय सखाओं से या सखियों से बात करते होते हैं और कोई ने हमको हमसे जो ऊपर वाला है उसने हमको ऑर्डर दिया कि जल्दी आओ तो बड़ा आनंद लगता है तो क्या करना पड़े उस समय फट से डिटेच डिटेच होना पड़े तो जब चाहो सब कर्मेंद्रियों को ज्ञान इंद्रियों को चलाओ और जब चाहो तब न चलाओ आवाज से परे हो जाओ लेकिन इस रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुखते आवाज न हो इतने तक नहीं है मुख से भी आवाज से भी परे मन से भी आवाज में आने के संकल्प के परे हो जाओ कि बातचीत करना तो बंद कर दिया लेकिन अंदर ये बात भटक गई कि हमको ऐसे ही चांस बुलाई है और संघर्ष चल गया बुद्धि के अंदर तो वो निसंकल्प स्टेज नहीं हुई आवाज से परे नहीं हुए बाहर की आवाज नहीं तो अंदर की आवाज चल रही है, तो मुख से चुप हो जाओ और मन में बातें करते रहो। आवाज से परे अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज से परे, क्योंकि मन की आवाज अगर हो रही है थोड़ी साइलेंस नहीं कहेंगे, अशांति है। अशांति बाहर नहीं है तो अंदर शांति के सागर में समझ जाओ, समझ आए। ये सिर्फ साइलेंस की अनुभूति कितनी प्यारी, अनुभवी तो हो ना। एक सेकंड भी आवाज से परे हो, सिर्फ साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कितना प्यारा लगता है। साइलेंस प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि जो धर्म होता है वो कभी भूलना नहीं चाहिए। जो चीज प्यारी लगती है उस तरफ बार बार रुझान होती है। स्वर्ग प्यारा लगता है, पैराडाइज प्यारा लगता है, तो अच्छा ही लगता है। स्वर्ग नाम से मुख में पानी आ जाता है, क्यों आ जाता है? क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। तो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, ओरिजिनल देश भी शांत देश है, इसलिए आत्मा को सीख साइलेंस बहुत प्यारी लगती है। एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है अगर इसे सीख साइलेंस की स्टेज में स्थित हो जाए, क्योंकि सीख साइलेंस होती है बाप के घर में और हम हैं वहीं के रहने वाले, तो बाप का घर कहाँ है? है शांति धाम, ऊपर जाना है। और मुरली ने तो एक बात में बोला है शांति धाम को भी नीचे उतार लेना है, तो जरूर है नीचे है अभी। हाँ, अनुभव करने वालों के लिए तो है, जिनको ये निश्चय हो गया जो पाना था तो पा लिया। अगर ऐसी स्टेज बन गई तो कैसा भी अशांत वातावरण हो, मधुसूदन के मधुबन में ही क्यों ना ऐसा वातावरण बन जाए, तो भी उनको सीट साइलेंस की अनुभूति जरूर होगी। तो एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है, कितना भी मन से कर्म से थके हुए हो, लेकिन अगर एक मिनट भी सीट साइलेंस में चले जाओ तो तन और मन को आराम ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत समय आराम करके कोई उठता है, तो कितना फ्रेश होता है। कभी भी कोई हलचल होती है, लड़ाई झगड़ा हल्ला गुल्ला कुछ भी होता है, तो एक दो को क्या कहते हैं, शांत हो जाओ, क्योंकि शांति में आराम है। तो आप भी सारे दिन में समय प्रति समय जब भी समय मिले स्वीट साइलेंस में चले जाओ, कहाँ चले जाओ माने कहाँ के वासी हो जाओ, मधुबन वासी बन जाओ। स्वीट साइलेंस का मतलब नहीं कोई ऊपर ही छुट्टी टन गई, अनुभव में खो जाओ। स्वीट साइलेंस में ऊपर अनुभव होगा क्या है? वहां तो अनुभव नहीं होगा। स्वीट साइलेंस का अनुभव कहाँ होगा? जरूरी से सच्ची पर ही